27 मई दिन बुधवार, दिन भर के साथ मैं हूं रेहान फजल। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में केंद्र से जारी अधिसूचना पर बहस। अरविंद केजरीवाल ने कहा,
मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, मैंने वादे किए थे। आज अगर आपके इलाके के अंदर पानी नहीं आ रहा तो एलजी साहब जाके पानी दिलवाएंगे क्या?
बात करेंगे भारत की पहली ट्रांसजेंडर प्रिंसिपल से, और दुनिया जहान में आज नजर होगी रोहिंग्या शरणार्थियों की समस्याओं और जद्दोजहद पर।
बर्मा जाएंगे जब हिंदुस्तान जिस तरीके से चलाता है ना प्रधानमंत्री, हमारे देश में भी ऐसा चलाएगा ना तब भी जाएंगे। अगर ऐसी हालत में जाएंगे ना हमको भी मार डालेगा।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार प्रभात पांडे से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है और उन पर बेवजह दखलंदाजी करने का आरोप लगाया है। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं और उनकी सरकार के कई फैसलों को उन्होंने रद्द किया है। आप सरकार ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना पर सवाल उठाए हैं जिसके तहत उपराज्यपाल को कई शक्तियां दी गई हैं। दिल्ली विधानसभा के इस विशेष सत्र में आज इस अधिसूचना के खिलाफ प्रस्ताव पास हो सकता है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के सूट बूट की सरकार वाले जुमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटवार किया है। अपनी सरकार के एक साल पूरा होने पर समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस पिछले साल लोकसभा चुनाव में हुई अपनी करारी हार को भुला नहीं पाई है, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। अपनी सरकार के एक साल के कार्यकाल के दौरान अल्पसंख्यकों पर हुई कथित ज्यादतियों पर मोदी ने कहा कि किसी भी वर्ग या धर्म के प्रति हिंसा या भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजस्थान में गुर्जर समुदाय और सरकार के बीच चल रही बातचीत नाकाम हो गई है। आरक्षण की मांग को लेकर पिछले एक सप्ताह से गुर्जर आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले आज ही राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि बुधवार शाम तक रेल पटरियों और सड़क मार्ग से आंदोलनकारियों को हटाया जाए। आंदोलनकारी लगातार सड़क और रेल मार्ग को रोके हुए थे। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका में फुटबॉल संचालित करने वाली संस्था फीफा के 9 अधिकारियों पर धोखाधड़ी, पैसों के हेरफेर और भ्रष्टाचार के आरोप तय किए गए हैं। स्विट्जरलैंड पुलिस ने ये गिरफ्तारियां बुधवार सुबह ज्यूरिख के एक होटल से की। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक गिरफ्तार लोगों को अमरीका प्रत्यर्पित किया जाएगा। अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फीफा के प्रवक्ता वॉल्टर डिग्रेगेरियो ने कहा कि शुक्रवार को फीफा के अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव में इन गिरफ्तारियों का कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा अध्यक्ष सेप ब्लैटर का इस भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। वॉल्टर डिग्रेगेरियो,
The president is not involved. Of course he is the head of FIFA, but he is not involved in any...
फीफा अध्यक्ष इस कांड में लिप्त नहीं है। वो फीफा प्रमुख जरूर हैं, लेकिन उनका इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए शुक्रवार को होने वाले चुनाव में वो फिर से खड़े होंगे और अगर चुन लिए जाते हैं तो फिर से 4 सालों के लिए वो हमारे प्रमुख बने रहेंगे। ये थे फीफा के प्रवक्ता डिग्रेगेरियो के शब्द। पाकिस्तान में करोड़ों डॉलर के फर्जी डिग्री घोटाले में सॉफ्टवेयर कंपनी एग्जेक्ट के चीफ शोएब शेख को हिरासत में लेकर उन पर धोखाधड़ी और पैसों के हेरफेर के आरोप तय कर दिए गए हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना के खिलाफ दिल्ली की विधानसभा के 2 दिनों के विशेष सत्र के दौरान सरकार और उपराज्यपाल की शक्तियों पर जमकर बहस होती रही। सरकार ने इस अधिसूचना के खिलाफ सदन में प्रस्ताव रखा है जिस पर चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायकों ने हंगामा किया। सुनिए सलमान रावी की रिपोर्ट।
दिल्ली विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र के अंतिम दिन भी खासा हंगामा रहा। आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल ने गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई उस अधिसूचना की प्रति को सदन में फाड़कर अपना विरोध दर्ज किया जिसमें दिल्ली सरकार और एलजी की शक्तियों का उल्लेख किया गया था। कल इस अधिसूचना के खिलाफ सरकार द्वारा विरोध प्रस्ताव सदन में पेश किया गया था जिस पर 2 दिनों तक बहस चलती रही। वहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार के एक वर्ष के पूरे होने को अच्छे दिनों की पुण्यतिथि के रूप में मनाया। पार्टी के प्रवक्ता दिलीप पांडे ने जंतर मंतर पर किए जा रहे प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जिन कामों को सरकार अपनी उपलब्धियों के रूप में गिनवा रही है, दरअसल वो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही हुआ है।
एक साल की नाउम्मीदगी, एक साल की निराशा इस देश की जनता के जहन में घर कर चुकी है। आप गौर करके देखिए, अमित शाह साहब की पीसी होती है, उसमें गिन के अपनी दो उपलब्धियां बताते हैं। ये दोनों ही उपलब्धियां सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनाई हुई एसआईटी के बारे में है। तो आप किसी और की उपलब्धि को अपने लिस्ट में जोड़ के बताना चाहते हैं, देखो कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया।
दिल्ली की सरकार और उपराज्यपाल के बीच चल रहे टकराव पर कांग्रेस की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल पर ही निशाना साधा। एक निजी चैनल को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने कहा,
जिस दिन से सरकार बनी है कोई ना कोई विवाद चल रहा है कि सरकार बनाई जाती है लोगों की सुविधा के लिए, आज ये अनाउंस कर दिया कल वो कर दिया। एलजी और उनके बीच में जो टकराव है, देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बात है, इस बात को केजरीवाल जी को समझना चाहिए और एलजी को भी समझना चाहिए। बिकट आपस में जब टकराव चल रहा है, मतभेद हो गया है और एक दूसरे पर एतबार नहीं रह गया, तो वो टकराव और भी खराब होता चला और नुकसान आपको मुझे हो रहा।
हालांकि कोलकाता प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का कहना था कि केंद्र दिल्ली की राज्य सरकार के कामकाज में किसी भी तरह का दखल नहीं देगा, मगर इसी बीच सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का मन बनाया है, जिसमें दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधी शाखा को रिश्वत मांगने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के अधिकार की बात कही गई है। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
हाईकोर्ट ने गुर्जर आंदोलनकारियों से रेल और सड़क मार्ग तुरंत खाली करवाने का आदेश दिया है। सरकार ने इस आदेश को अंजाम देने की तैयारी भी शुरू कर दी है। इस बीच सरकार और गुर्जरों के बीच जयपुर में बातचीत विफल होने के समाचार मिल रहे हैं। उधर आंदोलनकारियों ने आज भी कई जगहों पर रास्ते रोके और तोड़फोड़ की। जयपुर से नारायण पारेठ।
राज्य में सप्ताह भर से जारी गुर्जर आंदोलन को उस समय झटका लगा जब हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई। अदालत ने जयपुर और भरतपुर के पुलिस महानिरीक्षकों से रेल और सड़क मार्ग तुरंत खाली कराने को कहा है। अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को गुरुवार को कार्रवाई का विवरण लेकर हाजिर होने को कहा है। हाईकोर्ट ने रेलवे से भी नुकसान और हालात का ब्यौरा मांगा है। कोई 8 साल पुराने इस मामले में अदालत का यह आदेश उस समय आया जब दोनों पक्ष बातचीत की तैयारी करने में लगे हुए थे। पुलिस अधिकारियों ने गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला से मुलाकात की और उन्हें अदालत के फरमान से अवगत कराया। पुलिस के मुताबिक बैंसला का रुख सकारात्मक था। अदालत ने बार बार रास्ता रोके जाने पर नाराजगी जाहिर की है। गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया ने कहा है कि अदालत के हुक्म की पालना की जाएगी, लेकिन इससे पहले समझाइश की जाएगी।
राजकोट ने ये मंशा जाहिर की है कि ट्रैक जो है वो तुरंत खाली कराया जाए और डीजी को और हमारे हो एक तरह से चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने कल 10:30 बजे कोर्ट में भी बुलाया है। हम उसी समय से प्रयत्न कर रहे हैं कि आदेश को लेकर के आंदोलनकारियों के जितने नेता हैं उनसे हमारे विभिन्न जो अधिकारी और जो हमारे कार्यकर्ता है वो उनसे संपर्क करके उनको बताएं कि न्यायालय की मंशा इस प्रकार की है और हमें ये ट्रैक खाली करानी ही पड़ेगी। प्रयत्न तो यही करेंगे कि समझाइश से हो जाए और अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग और हमारे सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी लोग बैठेंगे, सोचेंगे किस तरीके से इस काम को किया जा सके।
इस आंदोलन के कारण कई स्थानों पर राज्य में मार्ग अवरुद्ध हैं। इसमें जयपुर आगरा सड़क मार्ग और दिल्ली मुंबई रेल मार्ग भी शामिल है। दौसा में राजमार्ग पर जाम लगाए बैठे आंदोलनकारियों के तेवर अब भी तीखे हैं।
हमारा गुर्जर का बच्चा बच्चा आंदोलन में कूदने के लिए तैयार है और ये बैंसला की अगुवाई में आंदोलन कर रहे हैं।
हमें 5% आरक्षण की पूरी तरह मांग है, सरकार जल्दी से जल्दी करे, अभी नहीं तो कभी नहीं, लास्ट आंदोलन है और पूरी हमारी मांग अभी सरकार तुरंत करे, नहीं तो ज्यादा हानि हो सकती है।
हम आज अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है है। इसमें कर्नल बैंसला की अगुवाई में पूरा समाज एक है। जब तक आरक्षण हमें नहीं मिल जाता हम इस आंदोलन को चलाएंगे।
उधर जयपुर में सरकार और गुर्जर नेताओं के बीच चौथे दौर की बातचीत अब भी जारी है। गुर्जर अपनी बिरादरी के लिए नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। पिछले एक दशक में इस आंदोलन ने कई बार रास्ते रोके हैं, लेकिन अब अदालत के फरमान से खुद आंदोलन का रास्ता रुकता हुआ नजर आ रहा है। नारायण बारेठ, जयपुर, राजस्थान।
दिन भर भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे और रात 9:30 बजे।
मनावी बंदोपाध्याय कृष्णनगर विमेंस कॉलेज में प्रिंसिपल बनने जा रही हैं। खास बात यह है कि मनावी एक ट्रांसजेंडर है और वो अपनी इस नई जिम्मेदारी को लेकर बेहद उत्साहित है। 2003 में मनावी ने 38 साल की उम्र में सेक्स बदलवाने के लिए ऑपरेशन करवाया था। हमारी साथी दिव्या आर्य ने उनसे बात की और पूछा कि कुछ समय पहले तो आपको कॉलेज से हटाया जा रहा था, ऐसा कैसे पलट गया मामला कि अब आपको वहां का प्रिंसिपल बनाया जा रहा है?
कैसे, वो तो भगवान का खेला है ना, हम तो इसे ही बोल रहे हैं। वो तो मेरा युद्ध में ही नहीं बोलने सकती, मैं बोलने सकती कि जो ईश्वर का कृपा है, मैं अभी ईश्वर का भगवान का कृपा मिला।
अच्छा मानवी, आपने साल 2003 में ऑपरेशन कराया सेक्स चेंज का, तो उससे लेकर अब तक आपकी जिंदगी में क्या आपका अनुभव रहा है? आप खुश हैं कि आपने ये फैसला लिया?
हाँ, एकदम खुश।
आप वैसे जिंदगी जीना पसंद करती हैं या जैसे आप पहले जी रही थी? क्या बदल गया आपके लिए?
मैं जो मेरा आत्मा जिसे चाहती हूँ वो तो मिल गया। फ्रॉम द डीप ऑफ माई सोल आई वॉज ए वुमन। हमारा एक्सीडेंट यही था, हमारा फिजिक एक्सीडेंट था। अभी क्या हो तो हमारा तो माइंड एंड फिजिक एक हो गया, इसलिए अभी तो ठीक है। 2000 से मैं अभी 12 साल हो गया, मैं तो लड़की बन जाई।
आपको क्या लगता है कि भारत में सेक्स चेंज जो लोग करवाते हैं उनको कैसी दिक्कत सामने आती है? कि आप परिवार का सपोर्ट या समाज का सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है जो लोग सेक्स चेंज करवाना चाहते हैं?
चैलेंज है परिवार की से है, परिवार तो फैमिली इज अ यूनिट ऑफ सोसाइटी, तो समाज को एक यूनिट है परिवार। तो परिवार को समाज का लोग कैसे बोल रहा है तुम्हारा घर में हो क्या, पूछते उनको बाहर दे दो, वो तो हिजरा है, वो तो यही है, वो है, वो लोग गंदा है। इसलिए कि बाबा माँ परिवार उपकिंग कर तो वो बीमार हो जाते हो, जो क्या करेगा इसको लेकर, वो बहुत तकलीफ करेगा। वो मेरा वो उनका संतान के ऐसा अत्याचार करने चाहते हो कि वो तो घर छोड़ के चला जाता है, वो किधर चला जाता है, जिधर उनका कम्युनिटी था उधर चला जाता है। हमारा एक ग्रुप थिएटर भी था, ओनली ट्रांसजेंडर एक्ट्रेस उधर अभिनय करती हो, हम लोग भी स्क्रिप्ट लिखते हो, हमारा दल का नाम है सॉन्ग।
तो ये जो इतनी सारी चीजें आप करती हैं, इनमें आपके लिए सबसे सबसे दिल के करीब कौन सा काम है? पढ़ाना, थिएटर करना, लिखना, क्या
सब एक साथ रिलेटेड है? पढ़ाना, थिएटर करना, शिल्पो एंड संस्कृति एंड एजुकेशन, ऑल आर रिलेटेड।
आपने अपना नाम बदला जब आपने सेक्स चेंज किया, सोमनाथ से मानवी, इसका क्या मतलब है और आपने क्यों बदला?
इसका मतलब है कि ऑल द ह्यूमन बीइंग्स इज मानव, लेकिन के मानव भी कैसे है ना, वुमेन, वुम नॉट मैन। सबसे लोग पृथ्वी में सबसे लोग ही तो मैन, लेकिन जो सबसे सब ह्यूमन बीइंग्स, बट मानव भी अलग होता है। जिस वुमेन होते हैं वो वुमेन नॉट फुल्ली मैन, इसलिए हमारा नाम मैं मानव भी रखती हूँ।
ट्रांसजेंडर प्रिंसिपल मानवी बंदोपाध्याय से बात कर रही थी दिव्या आर्य। फुटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय संगठन फीफा के उपाध्यक्ष सहित 6 अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोपों में स्विट्जरलैंड पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए अधिकारियों पर गलत ढंग से विश्व कप की मेजबानी देने और पैसे की हेराफेरी करने के आरोप हैं। गिरफ्तारी के बाद फीफा की ओर से बयान आया कि ये अच्छा दिन नहीं है, परंतु सही ढंग से आगे बढ़ने में ये दिन मददगार साबित होगा। प्रवक्ता ने यह भी साफ किया कि फीफा के अध्यक्ष का इस घोटाले में कोई हाथ नहीं है। बीबीसी संवाददाताओं के संवादों का सार सुनिए वैभव श्रीवास्तव से।
अधिकारियों के मुताबिक स्विट्जरलैंड की पुलिस ने भ्रष्टाचार के आरोप में फीफा के उपाध्यक्ष जेफरी वेब सहित 6 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। फीफा फुटबॉल खेल का अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संगठन है। गिरफ्तार होने वाले अधिकारियों में उपाध्यक्ष सहित यूजीनियो फिगुरेडो, होजे मरिया मारिन और एडुआर्डो ली शामिल हैं। पुलिस ने ये गिरफ्तारियां बुधवार सुबह ज्यूरिख के एक होटल से की। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक गिरफ्तार लोगों को अमरीका प्रत्यर्पित किया जाएगा। इन लोगों पर पिछले 20 सालों में गैर कानूनी तरीके से पैसा बाहर भेजने और धोखाधड़ी करने का आरोप है। न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार मैट अपूजो, जिन्होंने इस खबर का सबसे पहले खुलासा किया, कहते हैं,
Everything we're hearing is it's not related to the 2018 and 2022 awards, but that is...
हमें जो भी खबर मिल रही है वो 2018 या 2022 की मेजबानी से नहीं, परंतु 2014 के विश्व कप और उससे जुड़ी बातों की है। उन्होंने किस तरह से मीडिया में खबरें दी और कैसे अपने कार्य किए, ये सभी बातें जांच का हिस्सा हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार मैट अपूजो के शब्द। वहीं इन गिरफ्तारियों के बाद फीफा संचार निदेशक वॉल्टर डी ग्रिगोरियो कहते हैं कि ऐसे समय में इन खुलासों का होना फीफा के लिए अच्छी खबर है। ये सब फीफा की छवि के लिए अच्छा नहीं है, परंतु फीफा से गलत लोगों को बाहर किए जाने के संदर्भ में ये सही है। हमने उच्च न्यायिक जांचकर्ताओं की पूरी सहायता की है। हमारे लिए ये एक अच्छा दिन नहीं, क्योंकि हमें और भी काम करने हैं, परंतु दूसरी ओर ये एक अच्छा दिन भी है, क्योंकि इसके बाद हम सही ढंग से आगे बढ़ सकते हैं। फीफा संचार निदेशक वॉल्टर डी ग्रिगोरियो के शब्द। अखबार के मुताबिक सादे कपड़ों में आए पुलिस कर्मियों ने होटल के रिसेप्शन से कमरों की चाबी ली। खबर के मुताबिक ये ऑपरेशन बिल्कुल खामोशी से किया गया। स्विस अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई। वर्ल्ड सॉकर मैगजीन के पूर्व संपादक केयर रैडनेज कहते हैं कि इस घोटाले का बहुत गंभीर और गहरा प्रभाव होगा। इस घोटाले की महत्वता को बढ़ा चढ़ा कर कहना मुश्किल हो सकता है। फीफा से जुड़े हुए कई विवाद पिछले 5, 10 या 20 सालों में सामने आए हैं, परंतु ये विवाद उन सबसे बड़ा हो सकता है। इस विवाद के सामने आने से ये बात भी शंका के घेरे में आ गई है कि शुक्रवार को होने वाले अध्यक्ष के चुनावों को होना चाहिए या नहीं। वर्ल्ड सॉकर मैगजीन के पूर्व संपादक केयर रैडनेज के शब्द। फ्रांस की फुटबॉल लीग के अध्यक्ष फ्रेडरिक थियरेज ने कहा कि वो इन गिरफ्तारियों के बारे में सुनकर बहुत हैरान हुए हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल संगठन में पारदर्शिता की कमी है। कई लोग सेप ब्लैटर की बात कर रहे हैं, परंतु मेरे लिए ये मुद्दा केवल एक व्यक्ति से नहीं, पर इस बात से जुड़ा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय संघ का प्रबंधन कैसे हो रहा है, और सबसे अहम इस बात से कि इनमें पारदर्शिता की कमी है। फ्रांस की फुटबॉल लीग के अध्यक्ष फ्रेडरिक थियरेस के शब्द। फीफा के अधिकारी शुक्रवार को होने वाले अपने सालाना बैठक में शामिल होने के लिए ज्यूरिख आए हुए थे। इसी बैठक में फीफा के अध्यक्ष सेप ब्लैटर 5वीं बार अध्यक्ष चुने जाने वाले थे।
फीफा के अधिकारियों की गिरफ्तारी। ये बीबीसी है, आप दिन भर का पहला अंक सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। केरल हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में शुक्रवार को कहा कि माओवादी होना अपराध नहीं है और किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, पर ऐसे कई लोग हैं जिन्हें इसीलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उनके माओवादी होने का शक था। फिर ऐसे कई मामलों में सालों तक जमानत नहीं दी जाती और कई में लंबी तहकीकात के बाद भी कुछ साबित नहीं होता और अभियुक्त जेल में सालों काटने के बाद बरी होते हैं। विशेष रिपोर्ट के साथ दिव्या आर्य।
माओवादी होना अपने आप में एक कॉग्निजिबल ऑफेंस है, मतलब
अगर बैंड ऑर्गेनाइजेशन है।
झारखंड के डीजीपी राजीव कुमार लंबे समय तक नक्सल प्रभावित इलाकों में काम करते रहे हैं।
अगर बैंड ऑर्गेनाइजेशन है कोई और उसका कोई सदस्य है और उसपे हमारे पास पूरा साक्ष्य है कि वो माओवादी गतिविधियों में या किसी भी जो कि आतंकवादी संगठन है, जो कि प्रतिबंधित संगठन है, उसका सदस्य है और को घोषित किया गया प्रतिबंधित संगठन की, तो उसके आधार पे हम लोग जो लॉ में प्रावधान है उसके अनुरूप हम लोग उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं।
इनसे अलग केरल हाईकोर्ट की सोच नई हो सकती है, पर यह भी सच है कि अदालतें माओवादी होने के आरोप में गिरफ्तार किए लोगों को जमानत तक देने से कतराती हैं। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण कहते हैं,
हमारे कोर्ट्स में क्लास बायस इतना ज्यादा है, प्लस इस तरह का कह सकते हैं कि बायस अगेंस्ट माओइस्ट ऐसा ज्यादा बना दिया गया है कि किसी के खिलाफ अगर आपने ये बोल दिया कि भाई ये माओइस्ट है, माओइस्ट विचारधारा रखता है, उनको बेल डिनाई कर दी जाती है।
दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर जी एन साई बाबा को माओवादियों के साथ संबंध रखने के आरोप में पिछले साल मई में गिरफ्तार किया गया। एक साल से उन्हें जमानत नहीं मिली है। वैसे तो जमानत देना हर जज के विवेक पर निर्भर है, लेकिन मानवाधिकार वकील रिबेका मेमन जॉन बताती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के तय किए कायदे के मुताबिक मुकदमा चलने के दौरान जमानत देना सिद्धांत होना चाहिए और जेल में रखना अपवाद। प्रोफेसर साईं बाबा व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हैं और 80% विकलांगता से ग्रस्त हैं। रिबेका कहती हैं कि धारा 437 अदालत को ये हक देती है कि अगर कोई असाधारण वजह ना हो तो किसी बुजुर्ग, महिला, बीमार या विकलांग व्यक्ति की सेहत को देखते हुए जमानत दी जा सकती है। लेकिन इसी मामले में नहीं, न्यायपालिका में कई जजों के अपने पूर्वाग्रह होते हैं और वो उन लोगों के खिलाफ काम करते हैं जो अलग राजनीतिक सोच रखते हैं, जो अलग भाषा बोलते हैं या जो असहमति की आवाज उठाते हैं। इससे पहले भी अदालत ने माओवादी होने के आरोप पर किसी व्यक्ति के गिरफ्तार किए जाने पर आपत्ति जताई थी। मामला डॉक्टर विनायक सेन की जमानत की सुनवाई का था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था,
हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, डॉक्टर सेन सहानुभूति रख सकते हैं पर इससे वो देशद्रोह के दोषी नहीं माने जा सकते। अगर महात्मा गांधी की आत्मकथा किसी के घर में मिले तो क्या उसे गांधीवादी मान लिया जाए?
छत्तीसगढ़ के कबायली इलाकों में काम करने वाले डॉक्टर सेन को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई अपीलें और भारत में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की मुहिम के बाद आखिरकार उन्हें 2 साल बाद जमानत मिली। फिर छत्तीसगढ़ की निचली अदालत ने उन्हें दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई, पर इसके कुछ महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अपील की सुनवाई होने तक जमानत दे दी। प्रशांत भूषण बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि संविधान हमें सोचने, बोलने और संगठनों का हिस्सा बनने की आजादी देता है।
सबसे पहले तो ये लोगों को समझना पड़ेगा, कोर्ट्स को, कि माओविस्ट विचारधारा रखना, माओविस्ट से एसोसिएट करना, ये कोई क्राइम नहीं है।
माओवादी होने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने वाले चर्चित नामों की फहरिस्त लंबी है। इनमें भाषण देने और पब्लिसिटी के पर्चे बांटने जैसे आरोपों में जेल में 6 साल से बंद कोबाड गांधी भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के एक स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका सोनी सोढ़ी भी हैं। उन पर माओवादियों को पैसे पहुंचाने समेत 8 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 7 में वो बरी हो गईं। लेकिन इस दौरान जेल में बिताए 2 सालों में उनके साथ कथित रूप से यौन हिंसा हुई। यानी पूर्वाग्रहों और कानून की अलग अलग समझ के बीच सवाल बस इतना कि जेल और अदालतों के बीच जाया हुई जिंदगी की भरपाई कौन करेगा? दिव्या आर्य, BBC, दिल्ली।
शरण की आस में समंदर में फंसे रोहिंग्या लोगों का मुद्दा एक मानवीय संकट का रूप ले रहा है। हजारों लोग नौकाओं पर सवार होकर मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया तक जा रहे हैं, क्योंकि उनके अपने देश बर्मा की सरकार ने न तो उन्हें अपना नागरिक माना है और न ही उन्हें किसी तरह के अधिकार दिए हैं। लगभग 8,000 रोहिंग्या लोग भारत में भी रह रहे हैं। उनकी समस्याओं और जिंदगी की जद्दोजहद आज सुनिए दुनिया जहान में अशोक कुमार के साथ।
दुनिया जहान। पानी में छप छप चिलचिलाती गर्मी में इससे ज्यादा मस्ती और भला कैसे हो सकती है। कूड़ेदान के बड़े से डिब्बे में भरा है ये पानी और इसमें छप छप करने वाले ये बच्चे बेशक अभी दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में एक झुग्गी बस्ती में रहते हैं, लेकिन ये और इनके माता पिता लंबा सफर तय करके बर्मा से दिल्ली तक पहुंचे हैं। ये बस्ती है रोहिंग्या मुसलमानों की। संयुक्त राष्ट्र रोहिंग्या मुसलमानों को दुनिया के सबसे प्रताड़ित लोगों का नाम देता है। रोहिंग्या लोग मुख्य रूप से बर्मा के पश्चिमी रखाइन प्रांत में रहते हैं, लेकिन वहां की सरकार ने इन्हें कभी अपना नागरिक नहीं माना। उसके लिए ये बस बांग्लादेशी प्रवासी रहे हैं। रोहिंग्या लोगों को बर्मा में न तो जमीन जायदाद रखने का हक है और न ही बेरोक टोक कहीं आने जाने का। उन्हें पढ़ने लिखने का भी अधिकार नहीं है। इन लोगों पर बहुसंख्यक बौद्ध लोगों के अत्याचारों की खबरें अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आती रहती हैं। जोहरा बेगम 5 साल पहले बर्मा से भारत आईं और बर्मा के बौद्ध लोगों को वो सांप से भी खतरनाक बताती हैं।
वो तो जानवर की तरफ से बेहतर भी है, जानवर भी फिर भी मतलब रास्ते में सांप भी आकर सामने हुए तो सांप भी अगर काटने को सांप के सामने अगर काटने के टाइम खड़ा होता हम सीधा इंसान भी खड़ा है तो सांप भी आराम से निकल जाते हैं, मगर सांस से भी खतरा है हमारे जो देश में।
रखाइन प्रांत में 2012 में बड़े दंगे हुए। वजह थी एक बौद्ध महिला का बलात्कार और उसके बाद उसकी हत्या। इसके इल्जाम लगे 3 रोहिंग्या मुसलमानों पर। पूरे रखाइन प्रांत में दंगे हुए जिनमें लगभग 200 लोगों की मौत हुई और हजारों बेघर हो गए। फिर मार्च 2013, अगस्त 2013, जनवरी 2014 और जून 2014 में भी वहां दंगे हुए और मरने वालों में ज्यादातर रोहिंग्या मुसलमान ही थे। अब्दुल शकूर भी कालिंदी कुंज की इसी झुग्गी बस्ती में रहते हैं। वो बताते हैं,
तो बहुत बहुत हजार हजार कुटी कुटे लग कर बच्चा को भी खत्म कर दिया, मार डाल दिया। इनके बाद जान बचाने के लिए बांग्लादेश में आया, बांग्लादेश से हिंदुस्तान आया। हिंदुस्तान आराम से भी रह सकता है।
जोहरा बेगम कहती हैं कि बर्मा में ना तो सरकार उनकी है और ना ही पुलिस, तो फिर हिफाजत कौन करेगा?
इतना जो जुल्म चलता है, घर में जवान लड़के है, रात को 2-3 बजे पुलिस वाला जाता, अगर उधर अच्छा लड़की देख लिया तो उनको रेप कर लेती है। तो हम मतलब सरकार को हाथ उठा के बात भी नहीं कर सकता, जब उठा के बात किया उनको सीधा 10-15-20 साल जेल में डाल लेती है। फिर वो जिंदा भी ऐसा सामने गोली भी मार देती है, चाकू भी मार देती है। यही है,
हजारों की तादाद में रोहिंग्या लोग बर्मा छोड़ रहे हैं। हालात यह है कि वो नौकाओं पर सवार होकर समंदर में तो निकल पड़ते हैं, लेकिन कोई भी देश उन्हें अपने यहाँ आने देने को तैयार नहीं है। इस वक्त भी हजारों लोग यूं ही समंदर में फंसे हुए हैं। बहुत से रोहिंग्या ये सोचकर मलेशिया और इंडोनेशिया का रुख करते हैं कि मुस्लिम देश होने के नाते वहां उन्हें आसरा मिल जाएगा, लेकिन हमदर्दी के सिवा कुछ नहीं मिलता। मलेशिया के पेनांग में रहने वाले पत्रकार सचिन गौड़ कहते हैं,
एक मुस्लिम देश होने के नाते हाँ, जो रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जो बर्ताव बर्मा में हो रहा है उसको देखकर एक जरूर सहानुभूति का भाव है, लेकिन जब वो अपने देश अपनी जमीन पर जब वो अप्रवासी आते हैं तो फिर समस्या दूसरी हो जाती है। वहां पर फिर एक तनाव दूसरी तरह का होता है कि हम सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सेवाओं में या नौकरियों में अपने लोगों को, मलेशिया के लोगों को नौकरी दें या फिर रोहिंग्या मुसलमानों को। और इसी वजह से मलेशिया की सरकार ने बार बार ये स्पष्ट किया है कि हम उन्हें शरणार्थियों का दर्जा नहीं दे रहे हैं, हम संयुक्त राष्ट्र की संधि पर भी हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं।
इसी तरह की हमदर्दी रोहिंग्या लोगों को लेकर इंडोनेशिया भी दिखाता है और कुछ मदद भी करना चाहता है, लेकिन अपने यहाँ इन्हें बसाने को वो भी तैयार नहीं है। थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी रोहिंग्या लोगों के लिए अपने दरवाजे बंद किए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी अबट अपने रुख पर कायम है।
नौकाओं पर सवार होकर आने वाले लोगों को यहाँ बसाने का विचार मानवीय तस्करी को बढ़ावा देना होगा।
बहुत से लोगों के लिए यह सफर जानलेवा होता है। कईयों की नौकाएं डूब जाती हैं तो कुछ बीमारियों की भेंट चढ़ जाते हैं, तो कई इंसानी तस्करी करने वालों के हत्थे चढ़ जाते हैं। पिछले दिनों ही मलेशिया की पुलिस को लगभग 140 कब्रें मिली हैं। ये कब्रें ऐसे प्रवासियों की हो सकती हैं जिन्हें गैर कानूनी तरीके से दूसरे देशों में भेजा जा रहा था। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी का कहना है कि भारत में 8000 से ज्यादा रोहिंग्या लोग देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। नियमित रूप से काम न मिलना, बच्चों का स्कूल में दाखिला न होना और रहने की स्थायी जगह न होना, ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनसे रोहिंग्या लोग यहाँ 2-4 होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें यहाँ रहने पर सुकून है। कभी बर्मा जाने की बात पर अब्दुल शकूर कहते हैं,
अरे बर्मा जाएंगे जब हिंदुस्तान जिस तरीके से चलाता है ना प्रधानमंत्री, हमारे देश में भी ऐसा चलाएगा ना तब भी जाएंगे। अगर ऐसी हालत में जाएंगे ना हमको भी मार डालेगा।
अब्दुल शकूर अब यहीं मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखकर अपनी दुकान खोलना चाहते हैं, जबकि जोहरा बेगम चाहती हैं कि उनके बच्चे भी यहीं रहकर पढ़ लिख जाएं। अशोक कुमार, BBC दिल्ली।
रोहिंग्या शरणार्थियों का दर्द। और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार प्रभात पांडे से। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में केंद्र सरकार की अधिसूचना के खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया गया है। इस अधिसूचना के तहत उपराज्यपाल को प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को लेने के अधिकार थे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के सूटबूट की सरकार वाले जुमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटवार किया है। PTI से बातचीत करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस पिछले साल लोकसभा चुनाव में हुई अपनी करारी हार को नहीं भुला पाई है। राजस्थान में गुर्जर समुदाय और सरकार के बीच चल रही बातचीत नाकाम हो गई है। आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समुदाय पिछले एक हफ्ते से आंदोलन कर रहे हैं। अमरीका में फुटबॉल संचालित करने वाली संस्था फीफा के 9 अधिकारियों पर धोखाधड़ी, पैसों के हेरफेर और भ्रष्टाचार के आरोप तय कर दिए गए हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर में समय आ पहुंचा है आपसे विदा लेने का। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद की शाकिर आलम ने। रेहान फजल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।